بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحزن سیشن نمبر 15. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ آج کا سیشن پرائیورٹی سیٹنگ کو دیں گے, اور کل میں نے کافی لمبا سیشن آپ کو بھیجا تھا جو اسی بارے میں تھا کہ ہم لوگ اپنی پرائیورٹیز کیوں صحیح طرح نہیں سیٹ کر سکتے, اور ہم کیوں ایسی باتوں کو ریئیکٹ کرتے ہیں جو ہماری پروڈکٹیویٹی کم کرتی ہے, ہم لوگوں سے کیوں ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, ہم کیوں سیلف پٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ہمیں جب ایکسپیکٹیشنز نہیں پوری ہوتی تو ہمیں فرسٹریشن اور غصہ آتا ہے اور اس سے ہماری پروڈکٹیویٹی اور بھی کم ہو جاتی ہے. پھر امید اور توقع کا فرق میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ہوپ اور ایکسپیکٹیشن میں کیا فرق ہے, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیکسٹ سیشن جو ہے, یعنی آج کا سیشن, وہ ہم کمپلیٹلی پرائیورٹی سیٹنگ کے اوپر کریں گے. کیونکہ جب تک ہمیں اپنی ترجیحات نہیں پتہ ہوں گی اور جب تک ہم اپنی ترجیحات کو ٹھیک جگہوں پہ نہیں رکھ دیں گے, تب تک ہم ایک آرگنائزڈ اور خوش اور حشاش بشاش زندگی نہیں امیجن کر سکتے. اور لا تحزن والی جو سچویشن ہے کہ غم نہ کریں, تو غم ہم تبھی نہیں کریں گے جب ہماری پرائیورٹیز پوری طرح میٹ ہوئی ہوئی ہوں گی اور ہم اپنی ترجیحات کو ٹھیک ٹائم پہ اور ٹھیک موقع پہ پورا کر چکے ہوں گے اور ہمارے ذہن ریلیکس ہوں گے, تبھی ہم لوگ ایک لا تحزن والی سچویشن میں انٹر ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آج میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایکسرسائز بتا رہی ہوں کہ آج جتنے کام آپ نے کرنے ہیں, مثلا دن میں ہمارے روٹین میں کام ہوتے ہیں نا, ہم صبح اٹھتے ہیں, ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں, وضو بناتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم صبح کے وقت ہی قرآن پڑھتے ہوں, پھر اس کے بعد ہمارے اور معمولات ہوتے ہیں, ناشتہ بناتے ہیں, بچوں کو کھلاتے ہیں, بہت سی چیزیں, بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا, یا اگر آج کل چھٹیاں ہیں تو انہیں چھٹیوں کا کام کرانا, ہمارے ایک دن میں بہت سے کام ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ان کاموں کی ایک لسٹ بنا لیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے سب کام جو آپ کے پڑھائی سے متعلق ہیں اس کی ایک لسٹ بنا لیں. شروع سے میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گی کہ لسٹ میں کیا ہونا چاہیے. آئی جسٹ وانٹ یو ٹو میک اے لسٹ بلائنڈلی, مطلب آنکھیں بند کر کے آپ یہاں پہ ابھی اس سیشن کو پاز کریں اور آپ اپنی لسٹ بنائیں جس میں آپ 10 سے 12 کام لکھیں. یہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ کو سیشن آگے سمجھ نہیں آئے گا, اور آپ کو پھر اس سیشن میں کی گئی باتیں بھول جائیں گی. تو پاز کریں سیشن کو اسی وقت اور اپنے آج کے سارے کام لکھیں. اچھا جی, اگر آپ نے واقعی پاز کیا ہے اور آپ نے وہ کام لکھے ہیں تو ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا, تھوڑی سی بےمانی کی ہے, تو پھر ابھی پاز کر دیں اور وہ سارے کام لکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اب جب آپ وہ سارے کام لکھ لیں تو اس میں کچھ ایسے کام ہوں گے جو آپ نے آج ہی کرنے ہیں, یعنی کچھ بھی ہو جائے آپ نے وہ کام آج کرنے ہیں. اگر آپ نے وہ کام آج نہیں کیے تو آپ کو سیریس مسئلہ درپیش آ سکتا ہے. آپ کو کوئی جیسے آپ کی ڈیڈ لائن مس ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بل کی ادائیگی رہ جائے, ہو سکتا ہے آپ نے کوئی سامان کسی کو وعدہ کیا ہو ڈیلیور کرنا ہو, وہ آپ بھول جائیں یا نہ کر سکیں. تو ایسے کام ہوں گے جو آپ نے بس آج ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ان کاموں کے آگے آپ اے لکھ دیں. وہ کیٹیگری اے کے کام ہیں, یعنی ان کو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے, بس وہ آپ نے آج ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ان کاموں میں ایسے کام بھی شامل ہیں جو آپ روزانہ کرتے ہیں اور وہ فرض ہیں, جیسے نماز, وہ بھی کیٹیگری اے کے کام ہیں. میرے تو خیال میں روزانہ قرآن پڑھنا بھی کیٹیگری اے ہے. اگر آپ اس کو ابھی فی الحال نہیں کر رہی ہیں, آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے, تو اٹس اوکے, وہ کوئی فرض نہیں ہے. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے کام ہوں گے جو آپ روزانہ کرتی ہیں اور آپ ان کو ضروری سمجھتی ہیں, تو وہ کیٹیگری اے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ان سب کاموں کے آگے اے لکھ دیں. اب جب آپ اے لکھ دیں گی تو اس میں سے کوئی ایسے کام ہوں گے جو آپ نے بس ابھی کرنے ہیں. ہیں جی, اگر آپ نے ابھی نہ کیا وہ کام اگلے 6 گھنٹے میں, تو بہت ہی برا ہو جائے گا. بینک بند ہو جائے گا, یا اسکول بند ہو جائے گا, یا آپ کو کسی نے کوئی ٹائم دیا ہوا ہے, ڈینٹسٹ کا ٹائم ہے, اور اگر آپ اس میں نہیں گئیں اور آپ نے وہ کام نہ کیا تو وہ آپ سے مس ہو جائے گا. اس کے آگے آپ A1 لکھ دیں. جو آپ نے سب کاموں کے آگے A لکھا ہے نا, اس میں سے اگلے 6 گھنٹے میں جو کام آپ نے ضرور بل ضرور کرنے ہیں اس کے آگے 1 لکھ دیں. تو اب وہ آپ کے A1 کام ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو اس کے علاوہ کے کام ہیں ان کے آگے آپ 2 لکھ دیں. ये A2 हैं, यानी जब A1 हो जाएंगे तो फिर आप A2 कामों की तरफ तवज्जो देंगी। हो सकता है इस A कैटेगरी में कोई ऐसे काम भी हों जो A3 हों, जो आप शाम तक भी आराम से कर सकती हैं, करने तो आज ही हैं, लेकिन खैर है शाम को भी कर सकती हैं। जैसे आपने कल शादी पे जाना है मसलन, किसी फंक्शन पे जाना है और आपने आज बाल डाई करने हैं, तो वो आप शाम को भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं। अभी अगर आपने डाई लगा लिया तो फिर ये है कि A1 के काम आपसे मिस हो जाएंगे, आप डाई लगा के फिर गाड़ी में बैठ के भाग के डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकती हैं, तो वो काम जो हैं वो आपके A3 बन जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके A कैटेगरी के काम हैं जो आज ही करने हैं। फिर इसमें ऐसे काम होंगे जो आप कल कर सकती हैं, काम तो करने वाला है लेकिन अगर वो आप आज ना करें और वो कल कर लें तो वो कल का A बन जाएगा, लेकिन अगर आपने वो आज कर लिया तो बेहतर होगा, कल आपके पास ज़्यादा टाइम पैदा हो जाएगा। यानी कल करने से बेहतर ये है कि आप उसे आज ही कर लें, तो उनके सामने आप B लिख दें। ये कैटेगरी बी के काम हैं, यानी कि बेहतर है कि आप इन्हें आज कर लें, लेकिन ए जो है ना, ए फॉर आज याद रखें, बी जो है, बी है बेहतर है कि आज कर लें, वरना कल भी किए जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बी हो गए। अच्छा, इसके बाद अब ऐसे काम होंगे जो आप देख के कहें कि ये तो हाँ करने वाला तो है लेकिन मैं इसको इस हफ्ते में कर लूँ तो ठीक है, मतलब इस हफ्ते में आराम से मैं ये कर सकती हूँ, वीकेंड से पहले पहले अगर मैं ये काम कर लूँ तो मेरी डेडलाइन मीट हो जाएगी। उसमें हो सकता है आपने कहीं शॉपिंग के लिए जाना हो सकता है आपने किसी दोस्त के साथ या कॉलीग के साथ या कोवर्कर के साथ कहीं कॉफ़ी पीनी हो, उनके साथ कुछ डिस्कस करना हो सकता है मुझे कोई मैसेज लिखना हो सकता है अपनी और कोई काम करना हो, कोई ईमेल लिखनी हो, ज़रूरी ईमेल नहीं है लेकिन किसी को लिखनी है, ये आपके कैटेगरी सी के काम हैं। ठीक है, तो अब सी तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि उर्दू में क्या होता है, लेकिन सी को वैसे मैं अपनी तरफ से चालू कहती हूँ कि ये चालू काम है, बस लगे रहते हैं, अगर अभी कर लिया तो ठीक है, अच्छा है, हो जाएगा, ना हुआ तो कल हो जाएगा, वरना इस हफ्ते में हो जाए तो ठीक है, ये चालू टाइप के काम है। ठीक है जी, ये हो गया आपके ABC हो गए, मैंने आपको समझा दिए। अब इसके बाद एक कैटेगरी है कामों की जो आप रोज़ाना करते हैं लेकिन आपको एहसास नहीं होता, उसमें आप टाइम ज़ाया तो कर रहे होते हैं और टाइम उसमें लगा रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम ज़रूरी नहीं होते, वो डी काम है, उनको मैं डोंकी काम कहती हूँ। और ये मेरी अपनी क्लासिफिकेशन है, ABCD मैंने खुद बनाई हुई है, लेकिन वैसे ABCD जो है ये आप YouTube पे अगर जाके देखें, ABCDE ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग, तो ये है, ये किसी एक अंग्रेज़ हैं, मुझे उनका नाम भूल गया है, अच्छे हैं, बहुत टाइम मैनेजमेंट के अच्छे खासे गुरु हैं, उन्होंने ABCDE की कैटेगरीज बनाई हुई हैं और वो शायद उनका कोई मतलब भी है, लेकिन ये जो ABCD मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये वो ABCD सीख के मैंने अपने लिए खुद से बनाया हुआ, और ये बहुत आसान है। A जो है वो तो आज ही है, B जो है वो मतलब कि बेहतर है कि आज हो जाए, बी फॉर बेहतर, लेकिन कल भी हो सकता है। सी जो है वो चालू काम है, बस ठीक है, हफ्ते में हो गए तो ठीक है, मतलब कोई छत नहीं गिर रही है। डी जो है ना, उनको मैं डोंकी काम कहती हूँ। डोंकी काम जो है ना वो है फेसबुक पे खेलना, व्हाट्सएप पे फजूल किस्म की चैटिंग करना और फजूल किस्म के मैसेजेस फॉरवर्ड करना। मैं देखें जी, व्हाट्सएप को बुरा नहीं कह रही, ना मैं फेसबुक को बुरा कह रही हूँ, मैं भी ये चीज़ें, ये मैं आपसे बात व्हाट्सएप पे कर रही हूँ तो मैं क्या इसको बुरा कहूँगी, व्हाट्सएप तो मेरा स्कूल है, लेकिन फजूल में जाके उफला, अच्छा आज मुझे किसी ने मैसेज भेजा है, मेरी एक प्यारी स्टूडेंट ने मैसेज भेजा है कि मैडम आपने तो तलाक पे लेक्चर दिया था ना, तो वो तो इस तरह हैं कि तो क्या इमरान खान और जमायमा की दोबारा शादी हो सकती है, तो मतलब मासूम बच्ची है क्यूरियस है वो इस बारे में, लेकिन इतना लंबा मैसेज उसने लिखा है और मुझे इतनी हैरत हुई वो मैसेज देख के, शी इज़ ए यंग चाइल्ड, मतलब यंग बच्ची है वो, इस तरह की सोचती होगी, लेकिन इस चीज़ ये सोचना और फिर इस पे टाइम लगाना, मतलब हो सकता है कि यंग लोगों के पास इतना टाइम हो, लेकिन मेरे लिए जो है तो ये बड़ा मुश्किल है कि अव्वल तो मैं सोचूं कि क्या जो है तो हमारी प्यारी जमायमा भाभी जो हैं वो दोबारा से हमारी भाभी बन सकती हैं कि नहीं, और अगर नहीं बन सकती तो क्या होगा, और अगर बन गई तो क्या होगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये भी आपके टाइम टेबल में लिखी हुई होंगी, लिखनी है। वो जो मैंने आपको कहा था ना, पॉज करके लिखें, उसमें सारे काम लिखने जो आप दिन में करती हैं। और अगर फेसबुक पे टाइम लगाती हैं, अगर व्हाट्सएप पे लगाती हैं, अगर मैसेजेस फॉरवर्ड करती हैं, अपनी फ्रेंड्स के जोक्स पढ़ती हैं जो सारे के सारे उसमें। अब मेरी फ्रेंड्स तो मुझसे खासी मायूस हो गई हैं, उन्होंने मुझे जोक्स भेजने छोड़ दिए हैं क्योंकि मैं नहीं पढ़ती। और कभी कभी वो इतना मुझे ऑफेंड करते हैं, मेरी कुछ नेचर ऐसी है शायद, मैं ज़रा ज़्यादा करख्त हूँ, तो मैं उसके ऊपर कोई रिमार्क लिख के भेज देती हूँ। तो वो जो बेचारे जोक इन्जॉय भी कर रहे होते हैं, वो उनको बुरा लगता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लोग फिर आगे से जोक्स नहीं भेजते, ख़ास तौर पर जिस तरह के जोक्स सर्कुलेट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन ये जो है, ये ज़्यादातर बेकार काम है। तो अब आपने लिस्ट भी बना ली अपने कामों की, और आपने ए बी सी डी में उसे क्लासिफाई कर दिया है, और ए ए को भी आपने ए वन ए टू ए थ्री में भी क्लासिफाई कर दिया है कि ये तो बस अगले एक घंटे में करने वाला काम है, ये अगले छः घंटे में करने वाला काम है, और ये काम जो है ये मैं शाम को कर सकती हूँ, लेकिन करना मैंने आज ही है। ठीक है, अब जब ये क्लासिफिकेशन आपने कर ली है ना, इसके बाद डी के बाद एक एक कैटेगरी है जो कि ऐसे काम होंगे जिनको मैं लघवियात कहती हूँ, जिनको मैं बिल्कुल ही, यानी कि उनकी जगह ही नहीं होनी चाहिए टाइम टेबल में। उसमें जैसे हमारी ये यू नो सोशलाइजिंग है, और हमारा बाज़ार में जाके विंडो शॉपिंग करना है, कोई काम नहीं है बाज़ार में लेकिन हम जाके बस विंडो शॉपिंग करें, अल्लाह देखते हैं वहाँ सेल लगी है, हालांकि सेल से हमें कोई काम नहीं है, ना हमने किसी के लिए कुछ ख़रीदना है, ना हमें अपने लिए कुछ चाहिए, ना हमने किसी की बर्थडे और शादी पे जाना है, लेकिन हमने बस सिर्फ जाके देखना है कि अगले एडिशन में क्या आया है, और वॉल्यूम फलाने में और टमकाने में क्या आया है, और हम कहाँ पर जाके पैसे ज़ाया करें, और कहाँ पर जाके अपने कार्ड हम स्वाइप करें और ख़त्म करें ये पैसा किसी तरह, क्योंकि तनख्वाह अगली आने वाली है। तो ये इस तरह के काम जो है ना, ये ई हैं। और जिस गुरु का मैं आपको बता, रसल बर्क नाम है या रसल बर्ट नाम है मुझे भूल गया है, लेकिन जो भी वो, उन्होंने ई लिखा है इसको, और ई फॉर एलिमिनेट, यानी इन चीज़ों को अपने टाइम टेबल से निकाल दें, जो जिन चीज़ों का आपसे अभी कोई आपको ना ज़रूरत है, ना कोई आपको हाजत है, ना कोई मोहताजी है, बस वो चीज़ आप अपने टाइम टेबल से निकाल दें। अब आप ए बी सी डी ई कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप अपना दिन का टाइम टेबल लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें एकदम से आपको कोई बड़ा अच्छा सा एक नया आइडिया आता है, क्योंकि उस वक्त दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो गया होता है जो काम के बारे में होता है। आप काम लिख रहे होते हैं ना, तो आपको बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं जो वैसे नहीं आते आपको। वैसे आप फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई हो तो आप और कुछ सोच रही होती हैं, हस्बैंड के साथ बैठी हुई हो तो वो तो और ही कुछ सोचे होती हैं, तो कोई प्रोडक्टिव सोच ही नहीं होती है। तो ये जो है, जब आप ये आइडिया लिख रहे होते हैं जब आप अपने काम, तो आपको आइडियाज़ आते हैं, वो आइडिया ज़रूर नोट करें, दे आर वेरी प्रोडक्टिव आइडियाज़। जैसे आप लिखें कि अच्छा बाज़ार आपने लिखा है, और बाज़ार लिखते ही आपको याद आता है यार एक नई बुक शॉप खुली है, वो मैंने बच्चों को दिखानी थी। ये बड़ा एक बड़ा खूबसूरत आइडिया आपको आया है, ये वैसे नहीं आता जब आप बाज़ार के बारे में नहीं सोच रही होती, काम कर रही होती हैं, अपनी जॉब की जगह पर होती हैं, किचन में होती हैं, घर साफ़ कर रही होती हैं, ये ख्यालात आपको नहीं आते। तो वो आइडिया नीचे नोट कर लिया करें, क्योंकि वो फिर आगे जाके आपका कोई काम ही बनेगा वो आइडिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने अपने लिए कोई गोल सेट किए हुए हैं, मसलन हम हर रोज़ अपने टाइम टेबल में शायद एक्सरसाइज लिख रहे होते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे, तो अगर आपने एक्सरसाइज लिखा है तो बेहतर है कि आप अपना वेट का गोल या जिस मकसद के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो गोल आप रोज़ाना दोहराएं। आपने गोल सेट करना है, और गोल सेटिंग एक अलग एक्सरसाइज है जो इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको रोल्स एंड गोल्स में पढ़ाऊंगी। रोल्स एंड गोल्स की अभी इसमें इस कल का सेशन जो है वो रोल्स एंड गोल्स के बारे में है। तो गोल सेटिंग कैसे करनी होती है वो मैं आपको एक तमहीद बांध रही हूँ आपके सामने, कि आप जब एक, जैसे आप लिखते हैं कि मेरा गोल है कि आई वांट टू लूज़ वेट, मतलब किसका ये गोल नहीं है आजकल, पूरी दुनिया का गोल है सिवाय न्यूबॉर्न बेबीज़ के जी आई वांट टू लूज़ वेट। लेकिन आई वांट टू लूज़ वेट इज़ नॉट अ गोल। गोल क्या है, आई वांट टू लूज़ 20 पाउंड्स इन 6 मंथ्स, ये गोल है। आपने अपने आप को ये बता दिया कि मैंने 20 पाउंड कम करने हैं और मैंने 6 महीने में कम करने हैं। बस अब ये है कि आपकी पूरी प्लानिंग उसके मुताबिक होगी। अब आप हर रोज़ नहीं लड़ रही होंगी और हर रोज़ नहीं फ्रस्ट्रेट हो रही होंगी, अल्लाह मैंने तो 3 दिन एक्सरसाइज कर ली, अभी तो कुछ भी नहीं कम हुआ, मेरा वज़न सिर्फ आधा पाउंड ही कम हुआ है। नहीं, आपने एक ज़बरदस्त अपना गोल सेट करना है जिसमें क्वांटिटी हो, क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो, और वो मेजरेबल हो, उसमें आप उसको नाप सकें कि मैंने 6 महीने में वाकई ये कर लिया कि नहीं, और अगर नहीं किया तो मैंने कितना किया, 50% कर लिया, 75% कर लिया। सो द गोल शुड बी मेजरेबल, ठीक है जी, उसको आप नाप सकें। या आपने ये कहा कि मैंने मसलन के, और मैं क्या कहूँ, ये वेट के बारे में तो बहुत ही कॉमन है, तो मैंने आपको मिसाल दे दी। मसलन एक बहुत अच्छा गोल हाँ कि मैंने 1 महीने में सूरह रहमान याद करनी है, ये एक, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ कि गोल सेटिंग की एक्सरसाइज में मैंने ये सीखे थे। अच्छा, सूरह रहमान मैंने अब 1 महीने में सीखनी है, तो मैं आराम से बैठ के सूरह रहमान की आयात देखूं कितनी आयात हैं, मैंने दिन में कितनी आयात याद करनी है, फिर मैं MP3 पे या YouTube पे या कहीं पे जहाँ पे सूरह रहमान की तिलावत मुझे अच्छी लगती है वो मैं अपने लिए डाउनलोड कर लूं, फ़ोन में डाल लूं, फिर मैं एक टाइम रखूं कि जी मैंने रोज़ाना आधा घंटा एक घंटा इस चीज़ को देना है, और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 30 डेज़ मुझे सूरह रहमान याद होगी। ये आप करके देखें, आप यकीन माने ये इतना आसान है, और इस तरह मतलब कि कुरान का हिफ्ज़ जो है ना वो बच्चों के लिए नहीं है, वो बच्चों को कराया भी नहीं गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बच्चों को नहीं कराया। ये जैसे हम बच्चों को एकेडमीज़ में भेज देते हैं, 3-3 साल 4-4 साल रगड़े मारते हैं बेचारे, फिर हम उन्हें निकाल के जनाब एक आम स्कूल में डाल देते हैं कि लो बच्चे जी अब आप क्लास 5 में हो गए हो, बच्चा ना दीन का ना सा दीन का, उसको कुरान का तर्जुमा नहीं आता, उसको कुरान की एप्लीकेशन नहीं आती, उसको वो अरबी याद होती है और फिर वो उस अरबी को जो है तो अप्लाई भी सही तरह नहीं कर सकता क्योंकि उसको हमने एक इंटेंसिव एकेडमिक कोर्स में डाल दिया होता है। तो हिफ्ज़ तो सब के लिए है, हम सब के लिए है, ये हम जितना याद कर सकते हैं क़यामत के दिन इंसान उतना ही आगे अल्लाह के नूर की तरफ बढ़ सकेगा जितना उसे कुरान याद होगा। आपको पता है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो उस दिन जिस दिन कोई रोशनी नहीं होगी लोग अपने याद किए हुए कुरान की रोशनी में आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बहुत कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हम याद कर सकें और जितना ज़्यादा हम समझ के याद कर सकें। खैर, ये तो एक मैंने आपको वेरिएशन, एक डिविएशन सी बता दी। अच्छा, उसके बाद एक बहुत मज़े की बात है कि जब हम गोल सेट कर रहे होते हैं तो हम 1 साल का गोल तो इतना बड़ा सेट कर लेते हैं, पता नहीं हाथी जितना सेट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि 5 साल के बाद हम क्या कर रहे होंगे, हम इस गोल के साथ 5 साल के बाद क्या करेंगे। तो गोल जो है ना, जितने हम लॉन्ग टर्म सेट करें और फिर उसमें छोटे 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 सब गोल्स बनाएं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 1 साल के बाद जो है तो मुझे 5 बड़ी सूरतें याद होंगी, तो फिर उसको मैं डिवाइड करूँ एक एक साल में फिर 6-6 महीने में, तो इस तरह मैं वो गोल 5 साल में अचीव कर लूँगी और 5 साल भी मेरे अच्छी तरह गुजर जाएंगे और मैं एक बामकसद काम में लगी हुई होंगी। जैसे जब मैंने ये ऑडियो लेक्चर्स शुरू किए थे, जो लोग काफ़ी अरसे से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, हम सब दोस्त हैं माशाल्लाह, हया अल फलाह में दोस्त हैं और हिट एंड फिट मोमिनात एक और ग्रुप है उसमें हम दोस्त हैं, उनको पता होगा कि ये तकरीबन आप ये समझें कि जो ऑडियो सीरीज़ जो मैंने शुरू की हैं इसका भी 1 साल हुआ है। इससे पहले कुरान के लेक्चर्स आते थे ऑडियो पे, लेकिन ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लेक्चर्स हैं और जो प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट है, अब ये ला तहज़न है, इसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ, पिछले रमज़ान से ही हमने शुरू किए हैं ये। और ये चीज़ जो थी इसको, यानी लोगों ने बहुत मुझे कहा कि आप शुरू करें, हम आपको क्वेश्चंस भेजेंगे, आप प्लीज़ हमें उसका जवाब ऑडियो पे दें, लेकिन मैं अपने अंदर मुझे वो हिम्मत नहीं महसूस, मैं कहती थी यार प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट तो इतनी बड़ी किताब है, वो तो अरबी की नज़म है, कैसे होगा। आप यकीन करें कि प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट को 18 और 20 सेशंस में हमने कवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस तरह हमने कवर किया है, यानी वो अल्लाह का ही फजल है कि वो अरबी की नज़म भी मैंने पढ़ी, मुझे समझ आई या ना आई, बहुत मतलब डिक्शनरी के साथ पढ़ी और समझा, और फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन और फिर उसको जैसे कंपाइल किया गया, उम्मीद है कि उसकी एक किताब भी आएगी। एक बहुत हमारी प्यारी दोस्त हैं जो उस किताब की उसमें ऑर्गेनाइजेशन में बिज़ी हैं, और अल्लाह उन्हें और भी नेक मकासद में कामयाब करे। तो यानी कि वो सिर्फ गोल सेटिंग की बात थी कि जी हमने इसको इतने सेशंस में कवर करना है, एक सेशन आधे घंटे का होगा और एक सेशन के साथ इतनी इमेजेस होंगी और इतना इतना रिटर्न मवाद होगा उसके साथ। और वो हो गया, वो किताब हमने कवर, यानी 4-5 साल, आप यकीन करें 4-5 साल मैंने सोचा है कि ये कैसे होगा, ये बुक जो है ये पहुंचानी है लोगों को, और वो अल्लाह ने कर दिया। सिर्फ नियत थी, सिर्फ इरादा था। तो प्रायोरिटी सेटिंग एक ऐसी नेमत है कि जिसको वो नसीब हो जाए तो वो फिर अपने इरादों में और अपने मकासद में कामयाब होना शुरू हो जाता है और वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब तक हम एक चीज़ को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको वो इमेजेस भेजे हैं कि हर टाइम बहुत ज़्यादा है, सिर्फ प्रायोरिटीज़ नहीं होती हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसका ये मतलब है कि आपकी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं, और या एक चीज़ प्रायोरिटी होती है या वो एक्सक्यूज़ बन जाती है। तो जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी होती है उसमें फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। अच्छा जी, फिर ये ABCDE के मुताबिक मैं आपको अर्जेंट और नॉन अर्जेंट का एक मैट्रिक्स भेजूंगी, जो यही है कि कैटेगरी ए के काम कौन से हैं और कैटेगरी बी के काम कौन से हैं, और उसके बाद जो हैं तो सी क्या हैं और डी क्या हैं, और डी जो हैं वो उनको डोंकी वर्क है, उसको नहीं करना है, और ई जो है उसको तो एलिमिनेट कर देना है, वो तो इन 4 डब्बों में होगा ही नहीं। ठीक है जी, तो इसमें जो सी वाला खाना है मंसूबा बंदी का मैट्रिक्स जो मैं आपको भेज रही हूँ, ये 4 डब्बे हैं। और एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ काम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत अर्जेंट होते हैं, जैसे कैटेगरी A1 के काम हैं जो आज ही करने हैं। कुछ काम जो हैं तो वो अर्जेंट तो होते हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, वो आपको मजबूरन करने पड़ते हैं क्योंकि आप उन्हें निगलेक्ट करते रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग, कुछ काम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन वो अर्जेंट नहीं होते। तो जितना ज़्यादा टाइम आप प्लानिंग में गुजारेंगे, ये हिस्सा जो है कि नॉट अर्जेंट है, अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो जितना टाइम आप उस खाने में गुजारेंगे, आप प्लानिंग करेंगे, मंसूबा बंदी करेंगे, प्रायोरिटीज़ ठीक करेंगे, उतना ही आपका 1 और 3 वाला, यानी कि आज और बेहतर है कि आज करने वाले काम जो हैं ये कम होने शुरू हो जाएंगे, और आपको प्लानिंग और मंसूबा बंदी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। और वो फिर इंशाल्लाह रोल्स एंड गोल्स में भी आपको मैं बताऊंगी कि कितना इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर प्लानिंग और मंसूबा बंदी एक हशाश बशाश और खुश ज़िंदगी के लिए, और ऑर्गेनाइज्ड और फ़ायदेमंद ज़िंदगी के लिए, जो कि एक मोमिन और मोमिना की होनी चाहिए। ठीक है जी, तो मैं आपको सैम्पल भेजूंगी, सैम्पल ऑर्गेनाइज़र भी भेजूंगी आपको, जैसे मैं खुद अपनी डायरी में बनाती हूँ वही भेजूंगी आपको, जैसे मैंने एक दिन का जैसे एक डमी नीट करके लिखा है, क्योंकि मैं इतना नीट लिख नहीं रही होती तो आपके लिए मैंने नीट करके लिखा है। इसकी एक ट्रिक ये है कि जो आपके A1 काम है, जैसे नमाजें हैं, जैसे कुरान है, जैसे एक्सरसाइज है, वो सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइज़र में लिखें, सबसे पहले वो लिखें। हो सकता है वो आप रेड पेन से लिख लें, हाँ टॉप पे आपने वो काम लिए, वो अपने अपने डब्बे में अपने अपने टाइम के सामने वो काम लिख लें, बस जी ये टाइम तो ब्लॉक हो गया, इसमें मैंने ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि कैटेगरी A2 A3 के काम जो हैं वो आपने ऑर्गेनाइज़र में लिखने हैं, वो आपने अपनी लिस्ट में लिखने हैं। उसके बाद आप उसको B से भरना शुरू कर दें, B बेहतर है कि आज करने वाले काम है, तो अगर आपके पास जहाँ जहाँ टाइम होता है वहाँ पर आप B वाले काम भर लें। फिर उसके बाद सी की बारी आती है जो चालू काम है, और जितने ज़्यादा आप कर लें तो अच्छा है, फिर अगले हफ्ते में आपके पास टाइम होगा ना, आप चालू काम कर चुके होंगे, आज ही कर चुके होंगे, तो फिर आपके पास हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता टाइम फ्री होना शुरू हो जाएगा। और डी और ई तो हमने जाहिर है वो तो डोंकी काम है और एलिमिनेट काम है, तो वो हमने निकालने हैं, वो हमने नहीं करने, उनको आहिस्ता आहिस्ता अब हमने छोड़ना है, अपनी ये आदत हमने चेंज करनी है। अच्छा जी, तो अब इसके साथ जो मैं आपको इमेजेस भेज रही हूँ वो देखने से पहले आपने अगर अभी तक अपनी लिस्ट नहीं बनाई है ना, तो अब प्लीज़ अपनी लिस्ट बना लें, अपने कामों की लिस्ट बना लें और A1 A2 A3 BCD वाली लेबलिंग कर लें उसके ऊपर कि मेरे ये काम हैं, मेरे इस तरह के काम हैं, और उसके बाद आप ये इमेजेस भी खोल के देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि मेरा क्या मतलब है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल फिर रोल्स एंड गोल्स की एक्सरसाइज होगी, जो बड़ी ही मेरी वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइजेज है। आज मैंने आपको प्रायोरिटी सेटिंग की एक्सरसाइज कराई है, जितना मुझे इल्म था, उम्मीद है अल्लाह के फजल से मैं वो आपको भेज चुकी हूँ, वो बातें मैं कर चुकी हूँ, जो मैं कोई कमी रह गई हो तो अल्लाह भी मुझे माफ़ करे, आप भी माफ़ करें। मैं आपको बल्कि कोशिश करूँगी कि ओरिजिनल जो टीचर्स हैं, जो टाइम मैनेजमेंट के गुरुज़ हैं, उनकी भी वीडियोज़ मैं आपको YouTube से भेज दूँ, और साथ में मैं ये इमेजेस भी आपको अपनी डायरी से भेज रही हूँ। कल मिलने के वादे के साथ इंशाल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।